एक लेडी आ गई
कि
मेरे पति का तो मल्टीपल चल रहा है,
तो
हम उसको एडवाइस करते हैं तो अपने पति को क्या परफ्यूम गिफ्ट करे, ब्रेकअप करा दे। सो आज की जनरेशन लेट होती है, रात को देर तक मोबाइल पे खामखा बिजी रहती है। उनको सूर्य का नंबर मिल गया और वो लेट उठ रहे हैं तो सूर्य वैसे ही खराब कर लिया, सूर्य क्या काम करेगा उसके लिए।
सो ये थे प्रोफेसर अशोक भाटिया जी, फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। इनसे हमने आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं, लाइक रत्न, न्यूमरोलॉजी, कुंडली। एंड अगर आपको भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है कि रत्न कौन से लाइफ के पाथ में यूज़ करना चाहिए, किस करियर में यूज़ करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी आपकी कहाँ हेल्प कर सकती है, कुंडली का कहाँ कहाँ और कैसे उपाय है, उस चीज़ में और जानने के लिए आगे देखते रहिए। वेलकम, आपका स्टार स्पीक पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बैठे हैं एक बहुत रेनाउंड एक्सपर्ट के साथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। इनका नाम है प्रोफेसर अशोक भाटिया जी। अशोक भाटिया जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू हमें ग्रेस करने के लिए यहाँ पे। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ नाम ले लेती हूँ जिससे आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और आपको पता चले कि हम नेक्स्ट एक घंटे या कितने भी घंटे हमें ज्ञान मिल सके भाटिया जी के साथ, उस बारे में बात करेंगे। थोड़ा न्यूमरोलॉजी पे हम टच करेंगे, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे, थोड़ा ज्योतिष जानने की कोशिश करेंगे एंड एक मेन चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एंड आजकल के डे टू डे लाइफ में उस चीज़ का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, विच इज़ कुंडली। आपने मूवीज़ में सुना है, आपने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है, इवन आपके रिलेटिव्स को अगर शादियों में, किसी के करियर में कुंडली का कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाता है। तो कितना इफेक्ट करता है, क्या चीज़ें उसके इफेक्ट करती हैं, कितना हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ अगर आपको अधूरे ज्ञान के साथ यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। अब मैं अपना सारा जितना भी मेरी क्यूरियोसिटी है मैं भाटिया जी पे ट्रांसफ़र करूँगी। एंड सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, आप थोड़ा सा हमें और हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपने स्टार्ट किया था, आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कैसे घुसे, आपका इंटरेस्ट कैसे बना, थोड़ा सा हमें उस बारे में बताइए प्लीज।
कहा तो जाता है डेस्टिनी।
मैं
टीचिंग लाइन में भी नहीं जाना चाहता था लेकिन मेरे पास एयरफोर्स में जाने के नंबर नहीं थे।
आपका एयरफोर्स बैकग्राउंड है?
एयरफोर्स तक गया मैं, मन था लेकिन नंबर नहीं थे, प्लेनेट वो मेरे लिए वर्किंग नहीं थे, आ गया। लेकिन टीचिंग वाले मेरे प्लेनेट थे, मैं टीचिंग में गया। 11 साल टीचिंग हुई, उसके बाद अचानक से ऐसे चीजें घूमी, मैंने अपने पेरेंट्स को कह दिया अब जॉब नहीं करूंगा। रुझान इस तरफ बढ़ गया अब, क्योंकि एजुकेशन इतनी थी कि हर चीज को एनालिटिकल लेना एंड लॉजिकल लेना।
हाँ जी।
तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर कुछ ऐसे थे जो वो लॉजिक करवा रहे थे, नहीं पता था। धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में चला तो पता चला ये हो क्यों रहा है। तो जैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कहीं भी कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। फादर मेरे टीचर थे, दादाजी जमींदार थे, मैं इस लाइन में आ गया। और जैसे जैसे मैंने उस पर काम शुरू करा मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले और ज्यादा अच्छा लगा। मैंने एक आर्टिकल लिख दिया हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी को लेके, पसंद आया। उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर से मेरे आर्टिकल छपने के बाद मुझे बुलाया गया कोलकाता, और श्रोमणी अवार्ड मिला मदर टेरेसा के हाथ से। मैं और लेकिन मैंने सोचा जाना नहीं है इस फील्ड में, लेकिन स्टार्स को मंजूर था इस फील्ड में लाना। वो आर्टिकल साउथ में किसी ने इंग्लिश में करके पढ़ा, वहां भी पसंद आया, वहां से मुझे न्यूमरोलॉजी की ऑनररी पीएचडी मिल गई, लेके रखती। लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें जब चलता गया चैलेंजेस आते गए, प्लैनेट्स मुझे खींचते गए और नंबर मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आत्मसात होते गए और मैं उनको ऊपर रीडिंग करने लग गया और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। जब मैंने न्यूमरोलॉजी को एक्सप्लोर किया, मेरा इंटरेस्ट ज्योतिष में नहीं था, लेकिन ज्योतिष पढ़ी, उसको भी एक्सप्लोर किया, उसके अंदर भी कारण जाने, न्यूमरोलॉजी में था। और मुझे किसी ने कहा क्या कर लोगे न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि जो तब तक न्यूमरोलॉजी चली आ रही थी वो 1 से 9 नंबर के बीच में, 9 प्लैनेट्स 9 नंबर, बस ये कंसेप्ट चल रहा था, उसे बियॉन्ड जा ही नहीं रहे थे। जो नंबर मुझे मिल गया पूरी लाइफ के लिए, क्या वही रहेगा क्या? क्या मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता? क्या मैं उसमें अपने आप को ला के प्रोग्रेस नहीं कर सकता? जो नंबर मेरे पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, वो प्लैनेट्स क्या मेरे लिए काम नहीं करेंगे? करेंगे, कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है।
आपने एक जिक्र किया था अपने, जब मैंने आपसे इस बारे में पूछा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर्स ऐसे थे विच वर गाइडिंग यू, गाइडिंग योर डेस्टिनी। तो ये नंबर्स अगर किसी को जानना हो कि जिनको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, लेट्स से उनको अपना टाइम नहीं पता, डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम नहीं पता, तो उसको किससे बात करनी चाहिए? एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से ही बात करके उनको समझ में आएगा, या वो कुछ अपना आजकल अधूरा ज्ञान या गूगल करके थोड़ा ढूंढ पाएंगे? क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है हमारी एज ग्रुप में भी, लाइक टर्मिनोलॉजी बोलो तो मिलेनियल्स और जेंजी इंटरेस्ट बहुत है, पर हर चीज ना गूगल करने की आदत है। तो अगर गूगल भी कर रहे हैं तो क्या करें, थोड़ा अगर आप उस बारे में बता सकते।
देखो पुरानी कहावत है नीम हकीम खतरे जा। अब ये उन्हें नीम हकीम से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो वो नीम हकीम क्या जवाब देंगे कि ये कहावत कह रही है हकीम नीम के नीचे मत जाइयो तेरी जान को खतरा, यानी उन्होंने मुहावरे को भी अलग साबित किया। बहसबाजी कर रहे हैं, त्योहारों को लेकर बहुत बहसबाजी है, कोई उसकी सच्चाई तक जाना नहीं चाहता। बात करेंगे तो ग्रंथों की बातें कर देंगे, वो ग्रंथ उस समय लिखे गए, उसके एटमोस्फियर से, उसके वातावरण के हिसाब से लिखे गए, क्या वो चीजें अभी आप फॉलो कर रहे हो? ग्रंथ तो कहते हैं अब नॉन वेज मत खाओ, आप खा रहे हो, तो क्या वो फॉलो करोगे आप मॉडर्न तरीके से? क्वेश्चन ये है कि 9 प्लैनेट्स की बात क्यों करें भाई, आसमान में तो इतने हैं। 9 प्लैनेट्स इसलिए क्योंकि ये 9 प्लैनेट ही हमारी अर्थ पे असर डालते हैं और ये हमारी बॉडी पे असर डालते हैं, क्योंकि हम अर्थ का हिस्सा हैं।
करेक्ट।
इसलिए इन 9 प्लैनेट्स की हमारी स्टडी ग्रंथों ने करी। और भी हैं प्लैनेट्स, वेस्टर्न कुछ और होने शुरू हो गए, 2-4 एक्स्ट्रा डाल दिए।
हाँ जी, हाँ जी।
हमारे यहाँ राहु केतु है 9 प्लैनेट्स में, वो लोग नहीं मानते। मैं मॉडर्न कंसेप्ट में कहता हूँ कि राहु केतु क्या है, हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, 180 डिग्री पे रहेंगे।
हाँ जी।
पर वो हम पे कैसे प्रभाव डालते हैं ये हम सब उसमें देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में लोग तब आते हैं जब उन्हें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता।
ओके, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया।
यस, टाइम ऑफ बर्थ जो है वो नहीं पता, पर पता है तो कितना एक्यूरेट है। बहुत से लोग हमें टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, डॉक्टर साहब टाइम ऑफ बर्थ उस समय लिखते हैं जब मदर एंड चाइल्ड सेफ हो जाता है।
हाँ, बट उनका अर्थ में जब वो आते हैं वो तो कुछ मिनटों पहले या कुछ आधे घंटे घंटे पहले।
बहुत कंसेप्ट है हमारे। हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम को रेक्टिफाई करके उससे बातचीत करें, जो इवन टैली करते हैं वैसे बातचीत करते हैं।
ठीक है।
तो एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी होरोस्कोप बनती है, कुंडली बनती है, वो थोड़ी सी जटिल है।
ओके,
उसमें हम हाउस, प्लैनेट्स एंड राशि, साइंस, जो हमने इस यूनिवर्स में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आपस में मिले हुए हैं।
हाँ जी।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी में जो स्पीड चल रही है प्लैनेट्स की, हर महीने सूर्य राशि बदलता है, ये हम कहते हैं, असल में तो पृथ्वी राशि
बदलता है। हाँ,
तो क्या प्रभाव आएगा वो रीडिंग एस्ट्रोलॉजर करता है।
गॉट इट।
कि आपका सन कहाँ आया। अब ये चीजें न्यूमरोलॉजी में नहीं है, आसान है। तो रिजल्ट हमारा पूरा आ नहीं पाता था। तो जब मुझे चैलेंज मिला तो मैंने इस पे काम शुरू किया और कहा कि इस न्यूमरोलॉजी को ओनली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ मैं यहां तक लाने की कोशिश करूंगा कि वो एस्ट्रोलॉजी की तरह आंसर करे। और आज की तारीख में वो हो रहा है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया वैदिक अंक ज्योतिष, वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये ब्रांड हो चुका है। उसमें हर तरह का रिजल्ट आता है, जो आपको एस्ट्रोलॉजी में मिल रहा है रिजल्ट वो यहाँ मिल रहा है।
आपने हाँ, वैदिक साइंस,
वैदिक से जोड़ के कि ये मेरे प्लैनेट जो मुझे मिले हैं, जो नंबर मिले हैं प्लैनेट से जुड़े हुए, नंबर्स जो हैं वो हर जगह काम आ रहे हैं। अगर हम वहां बात करें एस्ट्रोलॉजी में, तब भी वो प्लैनेट लिख रहे हैं हम, नंबर से जोड़ लो। तो वो जो नंबर हैं जो मुझे मिल गए मेरी डेट ऑफ बर्थ में, आज 22 अक्टूबर 2024 है। मैं अपने सिस्टम में सेंचुरी नहीं लेता तो 20 नहीं लूंगा। तो आज की डेट ऑफ बर्थ में 22 का 2 बार आया, अक्टूबर का 1 बार आया,
हाँ जी,
और 24 में 1, 2, 1, 4 और आ गया। यानी आज की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 2 आ गया, जो कि चंद्रमा का नंबर है, 1 बार सूर्य का नंबर आ गया, और 1 बार राहु का नंबर आ गया,
विच इज 4।
अब इसमें जो वैदिक में मैं ग्रिड बनाता हूं उसके अनुसार चंद्र ग्रहण योग भी बना, अमावस योग भी बना और सूर्य ग्रहण योग भी बना। तो 3 योग जो बने हैं उसको लाइफ डिफिकल्टीज में लाएगा, क्योंकि चंद्रमा 3 बार आया तो उसका मन विचलित रहेगा, टिकेगा नहीं। ये योग हमारे अमिताभ बच्चन जी के पास भी है, लेकिन उनके पास 1 नंबर ज्यादा, सूर्य ज्यादा, और थोड़ा सा उन्होंने अपना जो खान पान है वो थोड़ा कंट्रोल्ड रखा है। तो जो मिला है वो हमारा भाग्य है, और जो नहीं मिला उसको हमने अपने कर्मों से लेना है। कर्मा डज नॉट मीन कुछ और, योर एक्शन, योर बिहेवियर, दैट इज अ कर्मा।
देन तो अगर हमें हमारे डेस्टिनी विच इज आर नंबर्स, अगर हमें उसके अंदर कुछ नहीं मिलता या फिर कुछ ज्यादा दोष जैसे कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से उनको बेटर कर सकते हैं?
बिल्कुल।
तो उसके अंदर अगर somebody is saying, कोई जैसे मैं आप एक पूछना चाहूंगी अगर आप केस स्टडी शेयर कर पाए, तो अगर कोई आपके पास आता है ऐसा कोई कि मेरी लाइफ में तो सब ही बुरा चल रहा है, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, तो आप सबसे पहले फिर उनके डेट ऑफ बर्थ से शुरू होंगे एंड देन कर्म देखेंगे, या हम अदर वे आउट जाते हैं?
हम पहले डेट ऑफ बर्थ से शुरू होते हैं।
पहले
देखते हैं कि उसको मिला क्या हुआ, क्या वो उसको पूरी तरह यूज कर पा रहा है। कईयों को मिला होता है उनको पता ही नहीं होता वो कैसे उसको यूज करें। जैसे आज की जनरेशन लेट उठती है, रात को देर तक मोबाइल पे खामखा बिजी रहती है, उनको सूर्य का नंबर मिल गया और वो लेट उठ रहे हैं, तो सूर्य वैसे ही खराब कर लिया, सूर्य क्या काम करेगा उसके लिए? आपके पीछे भागते हुए घोड़े लगा लेने से कुछ होने वाला नहीं।
तो
सूर्य की तरह जल्दी काम पे लगना और सारा दिन काम करना, उससे भविष्य परिवर्तन आपका होगा। फिर हम उसको बताते हैं कि तेरा ये वाला फील्ड जो वीक चल रहा है ना, उसको तू इस उपाय से कर ले। उपाय मीन्स कर्मा हम उसे बदल रहे हैं। जैसे उसके प्रोफेशन में, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये काम किसका है? ये बुध का है, मरकरी का काम है। और मरकरी का नंबर उसके पास नहीं है।
हाँ जी।
तो सबसे पहला उपाय कि तुम तुलसी को जल दो। अरे भैया ये तो हिंदुइज्म है। नहीं भैया, नहीं, तुलसी के अंदर पारा होता है, मरकरी।
ओके ओके।
जब हम उसको जल देते हैं तो उसका पारा रिफ्लेक्ट होके हमारी बॉडी में आता है, जिससे मेरा बुध ग्रह अच्छा होता है। तो तुलसी को जल देने से बढ़िया कोई बुध का उपाय नहीं है। कुछ लोग कहेंगे पन्ना पहन लो।
हाँ,
अब मैं रत्नों की बात करता हूं। हाँ, बुध का लिए है पन्ना, लेकिन क्या पन्ना पहनने से आपके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है जिससे आपको नुकसान हो?
ओके।
जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप पन्ना पहनते हैं और डेट ऑफ बर्थ में आपके चार है, जैसे आज वाले के
हाँ,
है
हाँ।
तो इसका बैंड बच जाएगा।
ओके।
बंधन योग बन जाएगा। बंधन योग मीन्स जेल, हॉस्पिटल, पागलखाना। तो हम क्यों बनाए उसका?
हाँ।
तो ये जो एडवाइजर है, अगर वो अधूरे ज्ञान के साथ नीम हकीम है तो वो कहेगा खतरे जान है अगर नीम के नीचे जाना। हम कहेंगे नहीं भैया, ऐसे आदमी तक मत जाओ। ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, ये तो ठीक है, लेकिन पहले जरा टटोल लो। वो नहीं हो पाता है।
आपने एक और चीज मेंशन करी थी कि जब तुलसी की बात आप कर रहे थे कि कुछ लोग उसको बोलेंगे कि हिंदुइज्म है, तो एक मैं जरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो लोग बाकी रिलीजन, बाकी धर्म फॉलो करते हैं उन इट्स हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, इट्स नॉट रिलीजन रिलेटेड इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आप थोड़ा मुझे बताइएगा, जो क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, मुस्लिम एंड वो बाकी रिलीजन्स को फॉलो करें, क्या वो भी न्यूमरोलॉजी में अपना
वो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से फॉलो कर सकते हैं? अगर उनके मन में या माइंड में बैकग्राउंड में कि धर्म आता है तो दूसरे उपाय है।
ओके।
जैसे नहीं तुलसी को जल देना तो ग्रीन कलर का रुमाल तुम अपने पास रख लो।
ओके।
ग्रीन कलर का क्रिस्टल रख लो। उपाय है। ऐसे ही और भी हैं।
ओके।
हर एक प्लेनेट से रिलेटेड नेचुरल उपाय भी हैं, आर्टिफिशियल उपाय भी हैं। प्रोवाइडेड आपको कौन सा यूज करना है, आपकी बॉडी में किस कलर की कमी है, उस कलर को बैलेंस करने से आपके प्लेनेट बैलेंस होता है, जिससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। हम कहते हैं भाग्य परिवर्तन हो गया। बेसिकली तो आपने कर्मास करे हैं, एक्शन करा है, भाग्य परिवर्तन वहां से।
और एक और मेरा सवाल था इसी से रिलेटेड कि जब लोग बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में या फिर ज्योतिषी, जो काफी मूवीज के थ्रू, काफी बोलचाल की भाषा के थ्रू कि ज्योतिषी को दिखा लेते हैं, तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं या कोई भी स्टडी करते हैं, वो या इसका कोई कोर्स है जो कोई घुसना चाहे तो उसमें जा सकता है? ओके।
हमारे यहाँ कोर्सेज भी हैं।
ओके।
पहले लिमिटेड जगह पे थे और वो कोर्सेज संस्कृत पे बेस्ड थे।
ओके।
जैसे बनारस में,
हाँ,
दिल्ली में भी लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, वहां आज भी संस्कृत में ही कराते हैं।
ओके।
लोग पुराना सिस्टम छोड़ना नहीं चाहते। बहुतों को नहीं पता कि पुराने सिस्टम में सूर्य उदय से घड़ी को गिनते थे और घटी पल से कैलकुलेशन होती थी।
ओके।
अब वो कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं। मॉडर्नाइज जो चीजें हो गई हैं, वो हो गया आपका इंग्लिश कैलेंडर और इंग्लिश वॉच, मिडनाइट टू मिडनाइट,
मिडनाइट यस,
अब तो उसको फॉलो करोगे।
हाँ।
और मॉडर्न तरीके से अब हम टेबल ऑफ असेंडेंट पे बेस कर रहे हैं, उस सबको हमने और आसान करा, कंप्यूटर में डाल दिया, सॉफ्टवेयर बन गया,
क्योंकि नंबर्स ही है।
हाँ। नहीं, उसका जो है कैलकुलेशन जो है एस्ट्रोनॉमी की, सब हमने उसमें डाल दी।
हाँ।
अब आसान हो गया। उसके अलावा ऐप आ गए, यानी हम लोग जितने इजी होते जा रहे हैं, बैकग्राउंड समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
हाँ।
तो जब आप स्टडी करते हो, पहले आपको पूरा ये सीखना है कि एस्ट्रोनॉमी नहीं सीखनी, एस्ट्रोनॉमी कैसे इफेक्ट कर रही है, और ज्योग्राफी से हमने देखना है कि वो मून या सन यूएसए से कितनी डिग्री पे है, इंडिया से कितनी डिग्री पे है, न्यूजीलैंड से कितनी डिग्री पे है, इसलिए हम प्लेस भी लेते हैं।
ओके।
और उस प्लेस से कैलकुलेशन डिग्रीज की लेके फिर हम वो देखते हैं कि जब कोई भी इंसान कहीं भी पैदा हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर डिग्री पे नाइन प्लैनेट्स की डिग्रियां लेता है।
Got it.
उस डिग्रियों से हमारी डीप स्टडी आती है। जब हम उस डीप जब उस डीप स्टडी से रीडिंग बताते हैं तो एक्यूरेसी आ जाती है।
जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि सब कुछ इंटर रिलेटेड ही है एट द एंड ऑफ द डे, एंड बेटर रिजल्ट्स के लिए सब कुछ को देखना जरूरी है।
अगर आता है तो जरूर देखना
हाँ, मतलब
चाहिए
जिनको आता है।
तो मैंने तो कोशिश करी है, बहुत से लोग नहीं ज्योतिष में जाना चाहते।
ओके
मत जाओ। मैंने इसको अपना मेक इन इंडिया वाले स्टोरी पे लेके आया हूँ
हाँ जी,
कि हमारी भारतीय जो पद्धतियां हैं उनको लो।
ओके
वैदिक अंग ज्योतिष का आधार नवग्रह यंत्र है। नवग्रह यंत्र में नौ के नौ ग्रह आते हैं जिनका अलग अलग यंत्र है, उसमें सब में नंबर है।
ओके
सबसे बड़ा यंत्र हम मानते हैं सूर्य यंत्र को, उसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं।
ओके
और उस सूर्य यंत्र का लोगों ने दूसरे तरीके से प्रयोग करके चाइनीज न्यूमरोलॉजी बनाई।
हाँ, उनकी ईयर्स भी
उनका सिस्टम कुछ उन्होंने अपने यहां से देखो। जो कोई व्यक्ति भी इस साइंस की बात करेगा अपने कल्चर को जरूर बीच में लाएगा। ये होता है नेचर में।
हाँ, नेचर।
तो हमें भी अपने भारत के नेचर को समझते हुए पुरानी चीजों को मॉडिफाई करते हुए हमें समझना है कि हम कैसे चीजों को करें। और ये एस्ट्रोनॉमी की सारी जो गणनाएं हैं वो हमें पंचांग में मिलती है। पंचांग बताता है कि आज सूर्य कौन सी राशि में कितने डिग्री पे है, मून कौन सी राशि में कितने डिग्री पे, ऐसे सारे प्लैनेट्स कौन सी राशि में कितने डिग्री पे हैं आज।
ओके तो पंचांग आपका, अगर मैं किसी ऐसे किसी को समझाने की कोशिश करूं तो आप एक एक दो लाइन में कैसे बताना चाहेंगे?
पंचांग बेसिकली हमें हमारी जो प्लेनेट की डिग्रियां बताने से कहता है कि अगर आज आप इस समय काम करोगे तो बैड प्लेनेट आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, गुड प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे। वो मुहूर्त है।
अब थोड़ा मुझे भी समझ में आया कि मुहूर्त आया कहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुहूर्त इज बेसिकली आपको प्लेनेट से सपोर्ट मिलता
है। यस।
अब बाकी तो आपके कर्म पे है।
यस।
अंडरस्टूड। हमने पंचांग के बारे में एक दो लाइन तो सीख ली, पर होते क्या है? क्योंकि नाम से तो समझ में आ रहा है कि पांच, पर पांच क्या?
पंचांग एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है।
ओके
इसमें हम आज के दिन जिसको पंचांग में कहते हैं तिथि, आप पांच अंग की बात कर रहे हो ना, तिथि, तिथि का मतलब डेट नहीं है।
ओके
डेट को हिंदी में दिनांक कहते हैं।
हाँ जी।
जो रात को 12 बजे से 12 बजे तक इंग्लिश कैलेंडर से। तिथि सूर्य और चंद्रमा की 12 डिग्री की दूरी को कहती है।
ओके
जिस समय 12 डिग्री पूरी होती है तिथि बदल जाती है।
ओके
बहुत साइंटिफिक है लेकिन समझ से परे है। उस तिथि को हम लोग अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है त्योहारों के उसी तिथि के कारण, क्योंकि हमारी तिथि रात को 12 बजे नहीं बदल रही है। हमारी तिथि जब सूर्य और चंद्रमा 12 डिग्री पूरी करते हैं एक्यूरेट तो तिथि बदल जाती है। और पंचांग का दूसरा पार्ट आता है करण।
ओके
करण इज द हाफ पार्ट ऑफ द तिथि।
ओके
अगर तिथि लगभग 24 घंटे की मानते हैं लगभग तो करण 12 घंटे का।
अच्छा
उससे भी एनालिसिस करते हैं कि जब जन्म होता है
सन एंड मून का ही डिस्टेंस है वो भी
उसका भी वही है।
ओके
वो 6 डिग्री है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट दैट इज योगा कॉम्बिनेशन कि वो उस आज के दिन वो हमारे तिथि का और बाकी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है उनके नाम है 27 नाम है। फिर राशियों के अलावा 27 नक्षत्र माने जाते हैं ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य चंद्रमा बाकी सारे के सारे उनमें भी मूव करते हैं। तो पांचवा जो जो चौथा हमारा एलिमेंट है पंचांग का वो नक्षत्र और पांचवा है वार
वार
वार डे।
ओके
तो जिसमें ये पांच के पांच चीजें एक्सप्लेन हो उसको पंचांग कहते हैं। अब इस पंचांग के बेसिस पे मुहूर्त निकलती।
अब
कहते हैं जी तारा डूब गया।
हाँ।
कहां से डूब गया भाई? नहीं, जब वीनस एंड द जुपिटर वो अस्त ना हो तो शादियां होती हैं।
ओके।
जब वो सन के 10 डिग्री के रेंज में चले जाते हैं ना जुपिटर एंड द वीनस, तो वो अस्त हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, उस समय शादियां नहीं होती। और हमारी जो ले लैंग्वेज है कि तारा डूब गया।
ओके।
अब जहां तक मैंने मुहूर्त की बात करी, बहुत से लोग आएंगे मुहूर्त को लेके कि जी शादी का मुहूर्त निकाल दो। हम उनको कहते मत निकलवाओ भाई, हम उसे कहते फीस हम एक्स फीस लेंगे तब बताएंगे। नहीं, आप ही से निकलवाना है।
हाँ।
तो हम कहते हैं हमारी एक कंडीशन है, क्या? जो मुहूर्त निकालेंगे उस समय आप फेरे करोगे।
हाँ।
क्योंकि आप पूछ के जाओगे वहां आपके लेट होने के कई कारण है। फर्स्ट कारण, सेराबंदी से पहले पहले सबका तैयार ना होना।
हाँ।
दूसरा कारण, बारात का डांस करने में लेट हो जाना। तीसरा कारण, अंदर जो बाकी एक्टिविटी चली तो जब फेरों का समय है तब तक आते आते इतना लेट हो चुका होता है, सब कहते जल्दी करो।
हाँ, वो मतलब जो हमने आजकल में देखा है कि इट्स वेरी क्या कहते हैं उसे, सोशल मीडिया के लिए बहुत ही पर्टिकुलर टाइप पे फोटो करनी है। हाँ, ऐसा हाँ, दिखना। हाँ, उस चक्कर में मुहूर्त तो सब निकल जाता है।
अब मान लो मुहूर्त पे आप शादी नहीं करते हो, बाद में हमारी जान खाते हैं, आपने तो निकाला था जी शादी, जी देखो जी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुहूर्त नहीं देखती, संडे को शादी कर लेती है।
हाँ।
तो मैं कहता हूँ आप भी वैसा करो भाई, जहां उनके फेरे होते हैं वो साफ सुथरी जगह है, पॉजिटिव एनर्जी है। दूसरा, फेरों के बाद वहां मीठा बटता है, सब हम प्रसाद स्वरूप लेते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो गया, मीठा बाटे, डायबिटी है, मैं नहीं, ये गलत। मीठा बटने से हमारी शादी वहां पक्की होती है, ये प्लैनेट्स की बातें हैं। अब उसके बाद कुंडली मिलान पे भी लोग आके बड़ी जान खाते हैं। कुंडली मिलान छत्तीसगढ़।
हाँ, छत्तीसगढ़ जो हर मूवी से लेके लोग लेके सब लोग उसके बारे में बात करते हैं।
और कह देते हैं श्री रामचंद्र जी के 36 गुण मिले थे। नहीं, उनके कोई गुण मिलान नहीं हुआ
उनका। तो
कारण,
हाँ,
जहां गंधर्व विवाह होता है, जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं लव मैरिज, और जहां कंडीशनल मैरिज होती है कि भैया तुम 30 लाख रुपए कमाओगे तब मैं लड़की ब्याहूंगा, कोई भी कंडीशन, वहां कुंडली मिलान नहीं होता। हमारे यहां चले आते, हमने कहा ये लड़के की पसंद है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ, तो कुंडली मिलान क्यों करवा रहे हो?
हाँ।
जी करा दो। अब जैसे आपने बोला 36 गुण, 36 गुण को 8 पार्ट्स में करा हुआ है।
ओके।
8 हिस्से, जिसमें सबसे ज्यादा जो गुण है 8 नंबर, वो हमने हेल्थ को दिए।
Okay.
जिसको लोग नाड़ी कहते हैं। और 3 नंबर हमने वेल्थ को दिए, जिसको तारा कहते हैं। हमारा मानना है अगर हेल्थ एंड वेल्थ ठीक रहेगी तो पारिवारिक जीवन ठीक चलेगा। क्योंकि अगर पैसे की कमी है बहुत मुश्किल है,
तो लड़ाइयां होंगी।
इसको मैंने न्यूमरोलॉजी में कैसे कहा कि आपका जो बेसिक नंबर मूलांक है वो आपकी हेल्थ, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है, भाग्य अंक है, वो आपकी वेल्थ है।
मूलांक और भाग्य अंक को सर कैलकुलेट कैसे करते हैं?
आज की जो डेट है 22, 2+2 कर दो तो ये मूलांक है, बेसिक नंबर है।
ओके ओके।
और अगर आज की डेट को मैं कंप्लीट जोड़ दूं 2+2+1+2+2+4,
वो आपका भाग्य अंक है।
तो वो आपका जो है बन गया 4 भाग्यांक। तो आज का मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम है, 4 है। तो बेस मैंने वहां से भी कर दिया।
ओके ओके।
मेरे बुक में भी गुण मिलान दिया हुआ।
बात
गुण मिलान की करती है दुनिया। अरे 36 में से 28 गुण मिल गए।
हाँ।
हम कहते हैं भाई हमारे से उनका हम कुंडली मिलान भी देखेंगे।
ओके,
उनके होरोस्कोप मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं?
एक सर इसमें एक मैं सब क्वेश्चन भी डालना चाहूंगा।
प्लीज प्लीज।
जैसे थोड़ा आज के लोगों के हिसाब से गूगल जो हमारी आदत है हर चीज करने की, तो काफी लोग जोडियाक साइंस हमारी राशियां उसका में देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में या शादियों में कि एरीज टॉरस के साथ सही है कि नहीं, पाइसेस अक्वेरियस के साथ सही है कि नहीं, ऐसे अलग अलग उसमें। फिर न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं लोग कि अगर मेरा 2 है और मेरे रिलेशनशिप मेरे पार्टनर का 5 है तो सही होता है कि नहीं, तो आर दे कनेक्टेड?
हाँ, सारे प्लैनेट्स आपस में कनेक्टेड। मैंने अपनी बुक में
हाँ जी
2 तरह के टेबल दिए हैं। एक दिया है कि ये सबसे मैचिंग वाली बात कि सूर्य की चंद्रमा से दोस्ती, और दूसरा दिया शादी के लिए टेबल।
अच्छा,
अलग है। अब जब हम उनको कहते हैं गुण तो तुम्हारे मिल गए 28, लेकिन कुंडली में लड़की के विधवा योग है, नहीं जी कुछ उपाय बता दो। अरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब बता रहे हैं ना तुम्हें कि इस मैचिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग नहीं मानते। अंत में फिर जो होता है वो।
आपके पास ऐसे केसेस भी आए हैं?
बिल्कुल आए। उसके बाद और बातें जो हैं जो हमारे ट्रेडिशन में थी हम फॉलो नहीं करेंगे, जो काम की बात है हम फॉलो नहीं करेंगे। शादियां आजकल डेस्टिनेशन में
बैठेंगी।
आसपास तो होती ही नहीं, या तो होटल में हो रही है या ग्राउंड में हो रही है। ग्राउंड के लिए मैंने आपको बोला वो जगह इतनी शुद्ध नहीं है जहां फेरे कर रहे हो,
इन सब चीजों से भी फर्क।
उसके बाद डोरी विदा होती है।
हाँ।
हमारे यहाँ पुराना ट्रेडिशन क्या है कि डोरी घर से विदा कर,
वो होटल से विदा कर देते,
और वो जो लड़की है विदा होते समय जो पीछे को फेंकती थी,
हाँ जी,
इसका मतलब नहीं हम समझे। वो कहती थी तुम्हारा घर भरा पूरा रहे, लक्ष्मी का वास हो, मैं तो जा रही हूं, तुम खुश रहो। अब जब होटल में वो फेंकती हैं तो रिवाज तो करना है हमको, कारण नहीं पता। अब होटल में वो रिवाज कर रहे हो, डेस्टिनेशन पता नहीं कहां कहां से सामान लेके आए हो कि भैया ये तो विदाई के समय होता है और ये होगा। तो जो आपका लक्ष्मी घर में आनी थी वो अब क्या हो रही है, होटल वालों को मिल रही है, ग्राउंड वालों को मिल रही है, घर वाला इल्ले। तो क्या करें फिर, घर में जगह कम है, डेस्टिनेशन मैरिज तो करेंगे। तो भैया उस समय आप सिंपल विदा कर दो।
ओके,
फर्स्ट टाइम तो लड़की कभी भी आएगी, एक दिन बाद आए, एक महीने बाद आए,
तब
जिसको फेरा बोल देते हैं हम लोग। तो उस समय जब लड़की को विदा करोगे तो ये रिचुअल कर लो, सो सिंपल।
थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया लोगों ने वीडियो बनाने के चक्कर में।
तो बना लो, एक्शन कर लो, लेकिन असली विदाई जो है
तब करिए,
घर से करिए।
जो हमारे जोडियाक साइंस का मिलन या फिर ग्रहों का है, वो रिलेशनशिप्स के अलावा जब हम करियर में जाते हैं या फिर हम बाकी जो लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं विद पेरेंट्स, विद फ्रेंड्स, विद कलीग्स, उन सब में भी इफेक्ट करता है?
बिल्कुल करता है जी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको अपने नंबर के बारे में बताया
था जी,
मेरे पास 9 का मंगल का अंक नहीं है, तो डिफेंस सर्विसेज मेरे को नहीं जाना, नहीं सूट करेंगी। मेरे पास बुध का अंक है, मरकरी, तो टीचिंग लाइन सूट करेगी।
ओके,
मेरे पास 7 नंबर केतु का है, तो 7 और 5 जब मिलते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजों को बढ़िया करवाते हैं, राइटिंग वर्क।
ओके,
तो मैंने बुक्स लिखी, तो कराया कि इन्होंने, ये नंबरों के प्लैनेट्स ने करवाया, तो मेरा प्रोफेशन जो चेंज हुआ कि टीचिंग अभी भी है लेकिन अब मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा, अब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। तो प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं जिनको गाइडेंस देनी है हमने कि बच्चा कौन सी लाइन में जाए। लास्ट वीक किसी मदर ने मेरे से पूछा, जानकार है एस्ट्रोलॉजी, वो भी जानती है, कि बेटी का, मैं कहा मेरे को बेटी से बात कराओ, क्योंकि उसका प्रोफेशन लग रहा फैशन डिजाइनिंग, और वो सब है ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, तो वो कहते नहीं ये इस प्रोफेशन में जाना चाहती है।
हाँ।
तो मैंने कहा फिर इस प्रोफेशन में जाना तो ये दो रेमेडी करो तब चांसेस बनेंगे,
वरना
तो इसका जो है फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ये है इसका प्रोफेशन। तो हम लोग को गाइड करने को बैठे हैं। तो बहुत से लोग जब उनको सब्जेक्ट चूज करना होता बच्चों का, पहले ही पूछ लेते हैं प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन का है, मैरिज का है, बच्चों का है, बच्चे हुए या नहीं हुए, यही क्वेश्चन मेनली आते हैं, या लव अफेयर्स का है कि मेरा अफेयर सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गया। तो बहुत से लोग तो यहाँ तक आते हैं अभी शादी हुई नहीं, होने वाले बच्चे का प्रोफेशन पूछना शुरू कर देते हैं।
फ्यूचर प्लानिंग
हम कहते हैं शादी जो हैपनिंग है ना, वो दो जने मिलेंगे तब होगी, उसके बाद चीजें डिसाइड होंगी,
क्योंकि उनके भी क्या प्लैनेट्स हैं, उनका भी क्या नक्षत्र है, सब मैच करना।
हमारा ये मानना है कि वीनस जो है शुक्र, वो मैरिज फिक्स कराता है, और जुपिटर उसे सेलिब्रेट करवाता है।
ओके।
इसीलिए हम कहते हैं दोनों जो है रोशनियां मिलनी चाहिए तभी मैरिज हो पाती है।
भाटिया जी, मैं आपसे ना एक और चीज पूछना चाहूंगी। ये किसी ने हमारे ना इंस्टाग्राम पे हमने कोई चीज़ डाली थी, उसमें किसी का कमेंट आया था इसमें, और ये मैं एज अ क्वेश्चन ही रखना चाहूँगी कि कुछ लोगों के पास जैसे किसी न्यूमरोलॉजी में किसी नंबर किसी प्लैनेट की कमी है, उनको किसी एडवाइज़र ने बोला कि आप ये रिंग पहन लीजिए आपका बेटर हो जाएगा। अब दे आर नॉट दैट वेल ऑफ, इतना पैसा नहीं है कि स्पेशली इस स्टोन का रिंग बना सके, तो जरूरी है तभी ठीक हो पाएगा या कुछ और रीजन
अगर भी होते हैं उपाय। ओके। जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था मरकरी के लिए तुलसी है
तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं,
ठीक है। हाँ। अब शादी नहीं हो रही, डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, ऐसों को हम एडवाइस करते हैं किसी को परफ्यूम गिफ्ट मत करिए।
ओके।
अब हमें एक लेडी आ गई कि मेरे पति का तो मल्टीपल चल रहे हैं, तो हम उसको एडवाइस करते हैं तो अपने पति को कह परफ्यूम गिफ्ट करे, ब्रेकअप करा दे। सो हैं, नेचुरल उपाय हैं, पर उसके लिए उसको अपनी बॉडी को कष्ट देके कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे सूर्य को अच्छा करने के लिए सुबह सनराइज के आसपास आपको सूर्य को जल देना है। हम आलसी कहां जाएंगे, इसके लिए हम रूबी बोल देते।
अच्छा।
तो हर तरह के हमारे प्राकृतिक भी हैं और आर्टिफिशियल
भी
है। ये जितने भी हमारे रत्न हैं, जेम्स हैं, इनका काम दिन में 2-3 घंटे का ही होता है।
ओके।
जिस समय उनकी होरा चल रही है, होरा में 1 घंटे का समय होता
ओके,
है।
ओके।
तो दिन में हर एक प्लेनेट की होरा चलती है, हर एक घंटे में चेंज होती है।
इज इट सिमिलर टू मुहूर्त?
नहीं
नहीं,
मुहूर्त इज डिफरेंट।
ओके। होरा इज फॉर
जेमिनी, होरा इज द डेली 1 आवर चेंज।
ओके। ओके।
हर एक घंटे में नेक्स्ट प्लैनेट जब सुबह सनराइज होता है, तो आज हमारा ट्यूसडे है, अगर उसको बिल्कुल सूरज की रोशनी को ढंग से देखोगे तो 7 रोशनियों में से रेड कलर आज सुबह ज्यादा प्रोमिनेंट था।
ओके।
क्योंकि उस समय मंगल की हो रहा थी, लाइकवाइज चेंज होता है। तो जब वो हो रहा आती है तभी वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं पता, इसलिए पिनवा देते हैं।
ओके।
इनका काम है उस प्लैनेट को अंदर स्ट्रॉन्ग करना जो प्लेनेट अंदर वीक है आपके, वो हम ही जानते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो।
ओके।
उसका नुकसान भी ना हो, क्योंकि हर रत्न नुकसान भी देता है।
वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही था कि आई नो अपने नोन में भी एंड इन जनरल इधर उधर आर्टिकल्स पढ़ के भी कि बहुत लोग ना अगर जैसे किसी ने उनको एक रिंग की सजेशन दिया कि अभी रिंग पहन लीजिए, एंड उसके बाद जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, दे स्टार्ट ब्लेमिंग इट ऑन द रिंग, एंड वो फिर उतार के फेंक भी देते हैं बिना सही से डिस्कार्ड करे, वो कहीं भी फेंक देते हैं गुस्से में, चाहे सही कि नहीं ये भी बुरा हो गया वो भी बुरा हो गया, सब इसी की गलती है, तो कब से मैं मानूंगा नहीं। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि क्योंकि उनको शायद उन्होंने ठीक से या तो अप्लाई नहीं किया या अधूरा ज्ञान की वजह से फायदे की जगह थोड़ा नुकसान हो गया उनका।
सबसे बड़ी इसमें विडंबना है कि वो सस्ते के चक्कर में ऐसे एडवाइजर के पास चले जाते हैं जिनका ज्ञान कम है, और उनका टारगेट है कि आपको रतन या जेम बेच के दो पैसे उसमें मैं कमा लूं। हाँ, हाँ। जबकि हमारा शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करता।
ओके।
बदनाम कौन होता शास्त्र? प्लेनेट की डिग्रियां, प्लेनेट की पोजीशन, प्लेनेट के हिसाब से पहनना है नहीं पहनना है, बहुत चीजें देखी जाती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर मैंने इमराज पन्ना पहनवा दिया तो जैसे ही राहु का उसके पास आएगा उसका बैंड बजेगा।
हाँ।
तो ऐसे ही उसका बैंड बज गया किसी का, तो दोष तो उन्होंने रतन को दे दिया ना। उस समय हम एडवाइस भी करते हैं इस रतन की ड्यूरेशन ये है।
ओके।
कोई पहन के हमारे पास आता है, हम हाँ। कहते हैं जब से तुमने पहना को फायदा हुआ?
हाँ।
नहीं जी, उतार दो। फिर उतारने का हम बता देते हैं कि जिस वार को पहना था उसी वार को उतारो और संभाल के रख लो, क्योंकि सोने में पहना हुआ है, सोना क्यों फेंकोगे?
हाँ जी, हाँ जी।
कल को जरूरत पड़ेगी तो आपको बता
दूंगा।
बात है टाइमिंग की कि किस समय कौन सा रतन पहनना है, कौन सा प्लेनेट वीक चल रहा है उसको सपोर्ट करना है। रतन जो हम पहनते हैं, जेम्स पहनते हैं, वो हम वीक प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहनते हैं, और जो दान करते हैं वो जो बैड प्लेनेट है स्ट्रॉन्ग सा उसको नॉर्मल कम करने के लिए हम वो उस प्लेनेट का दान कर देते हैं।
जैसे बहुत पहले कहीं मैंने किसी रिलेटिव में देखा था कि वाइट कलर का आई थिंक पर्ल था जो गुस्से के लिए रिंग फिंगर में।
हाँ।
पर कोई डिफरेंस नहीं दिखा मुझे उनके गुस्से में।
हाँ, देखो हर चीज के साथ हाँ। हमारा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्ट का मतलब होता है कि हम उसके लिए वैसे काम भी तो करें।
हाँ।
और वो पर ना पहने, सिंपल सा उपाय बताता हूँ कि अपने सिर के पास एक लोटा या एक गिलास पानी रात को रखें बिना ढके, और सुबह वो पानी जो है पेड़ पौधों को दे दें, केला पीपल तुलसी ना हो उनको दे दो, उससे भी आपका गुस्सा कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नहीं पहनना मत पहनो।
हाँ।
ये है नेचुरल वे। तो जो उपाय बता रहा है उसको इन सब उपायों का ज्ञान होना चाहिए कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये भी चंद्रमा का उपाय है, पर धर्म की बात जहां आई वहां हमने पर्ल पहना दिया मोती।
हाँ।
मत करो कुछ भी।
हाँ।
कहीं भी पानी वाला उपाय कर लो।
आपने जिक्र किया था कि हमारे प्लैनेट्स में हम सबसे ज्यादा सूर्य के थ्रू बाकी सबको हाँ। देखते हैं। मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहूंगी कि इसमें चांद मून क्या वो नेगेटिव है या वो सपोर्ट में ही है मून के? बिकॉज टेक्निकली एकदम ऑपोजिट देखा जाता है उन्हें, क्योंकि डे एंड नाइट।
नहीं नहीं, मेन हम प्लैनेट सन को इसलिए मानते हैं कि सन से ही सबको रोशनियां मिलती हैं।
हाँ जी।
और सन के आसपास चक्कर लगाते हैं।
करेक्ट।
सन से अर्थ टूटी, चलती अर्थ है, मानते हम सन है।
ओके।
और अर्थ का पार्ट है मून।
मून। हाँ, करेक्ट।
इसीलिए हमारी जो साइंस है उसको सूर्य को पिता मानती है, चंद्रमा को माता मानती है।
ओके।
सूर्य को ब्रह्मांड का राजा मानती है और चंद्रमा को क्वीन मानती है।
गॉट इट।
ये सब जो हैं अच्छे भी हैं और बुरे भी। आप एक अच्छे भले कोई गली में डॉग बैठा हो चुपचाप, आप उसको छेड़ दें तो क्या वो क्या करेगा?
हाँ,
तो ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको ये समझना कि कभी अच्छा फल देंगे कभी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये बड़ी डीप स्टडी है इस बात को जानने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ऊपर ऊपर से हमारा टारगेट है, फोकस है कि हमारे जेब में पैसे आने चाहिए, बस वही गड़बड़ हो जाती है। ये बहुत अच्छा शास्त्र है। पुराने समय में राजा लोग भी ध्यान रखते थे, इसलिए वो पैसे की डिमांड नहीं होती थी। गांव के सिस्टम में लोग इतना दे जाते थे पंडित जी को खाने का और चीजें, तो उनकी डिमांड नहीं होती थी। अब हम आजकल हो गए मॉडर्न, हमें एक अच्छा घर भी चाहिए, हमें एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए, हम अपने खान पान पे कंट्रोल कर सकते हैं, सात्विक हो जाए। लेकिन हमें आज के माहौल में ये सब चीजें चाहिए तो फिर हम फीस चार्ज करते हैं। अब समस्या वही है हर तरह की मार्केटिंग हो रही है कि जी मैं कुछ नहीं लेता और आपको 20-50 हजार का उपाय ऐसे से करवा देंगे कि आपका बेसिक, हम फीस कह के लेते हैं और उपाय कोशिश करते हैं ऐसे दें कि जो सामने वाला कर ले। इतनी हाई फाई फीस नहीं लेते लेकिन भैया लेते हैं।
हाँ जी, हाँ जी।
तो ये ट्रेंड जब तक नहीं बनेगा लोगों का विश्वास,
हाँ।
तो जिनका हम पे विश्वास है वो आते हैं, चाहे वो विदेश में बैठे हों, चाहे यहाँ
इंडिया में बैठे हों,
ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी हों, वो हमको फॉलो कर रहे हैं। ये विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है और हम उसको कंटिन्यू बना के रखे हुए हैं, तोड़ने में तो स्किंट नहीं लगता है जी।
मेरे अब ये थोड़े फॉलोअप क्वेश्चंस ही रहेंगे, जो मैंने आपसे सीखा, जो हमारी बातें हुई उन्हीं से मैंने, मुझे जो दो तीन डाउट्स हैं आई वुड से, मैं उन पे अपने लास्ट के क्वेश्चंस रखूँगी। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि कुंडली, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, ये सब सिर्फ इंसानों को होता है या घर या थिंग्स, मतलब जैसे घर, लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेस का जैसे वास्तु करवाते हैं, वैसे ये सब चीज़ें भी लागू होती हैं इन सब चीज़ों में?
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री है तो इंसान की, लेकिन उस इंसान को रहना कहाँ है? घर में। काम का करना है ऑफिस में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। तो उस इंसान को जो उस घर में रह रहे हैं वो जगह सूट हो रही है या नहीं हो रही, ये वास्तु आ जाती है। हम वो ऑफिस खोलने जा रहे हैं वो हमें सूट करेगा नहीं करेगा? एक कहावत है, किसी को उड़द अच्छी लगती है और किसी के लिए वो गैस करती है। पंजाबी में किसी नु मां स्वादी है किसी नु बादी, तो उसमें उड़द की दाल का क्या कसूर है? तो वो जगह मेरे हिसाब से सूटेबल है या नहीं, वो वास्तु की बैलेंसिंग है।
ओके।
अगर किसी रेमेडी से वो हो पाती है हम कह देते हैं ये रेमेडी कर।
ओके।
और कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स हैं कि अगर ये करोगे तो ये नुकसान होना ही होना है, एक्स हो वाई हो जेड हो, तो इसलिए वास्तु भी उनके साथ जुड़ जाती है। पर वास्तु में वो हमारे से इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे से।
ओके। मुझे इंटरेस्ट आपके स्कूल में है कि अगर कोई आप थोड़ा गाइड कर दीजिए कि क्या क्या सीख सकता है कोई वहाँ पे, थोड़े कोर्सेज के बारे में एंड थोड़ा टाइम ड्यूरेशन, कि अगर किसी को इस पॉडकास्ट या इसमें भी हम जो भी हमने बात करी उसमें कुछ इंटरेस्ट है और डीपर लेवल पे उसको जानना चाहते हैं तो आपके स्कूल से हम क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं?
देखो, हमारे संस्था का नाम इस्वान है।
हाँ जी।
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमी। हम जो भी सीखने के लिए आता है उसको हम ABC से शुरू करते हैं।
ओके।
बहुत से लोग हैं गूगल लर्नर, वो कहते हैं हमें तो आता है ज्योतिष, हमें सीधी लाल किताब सिखाओ, क्योंकि उनके मन में है कि लाल किताब में उपाय बड़े आसान होते हैं और जल्दी अप्लाई होते हैं।
ओके।
हम उसे कहते हैं पहले हमसे बातचीत कर लो, हमें लगेगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो लाल किताब सिखाएं। बहुत से लोग उसमें से निकल जाते हैं। जैसे लाल किताब तक जाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है,
बेसिक लेवल, एडवांस लेवल,
दोनों लेवल।
ओके।
उसके बाद न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है।
ओके।
जो मैथ्स में नहीं घुसना चाहते क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी दुनिया आज की तारीख में आ गई, अरे ये तो सर हमने क्या करना है, ये तो कंप्यूटर बना देगा। लेकिन जब तक आप उसका फॉर्मेट नहीं सीखोगे,
हाँ जी,
कि दोपहर के समय सन कहाँ होता है, रात के समय सन कहाँ होता है, कंप्यूटर में आपने AM PM क्या भर दिया, कंप्यूटर तो वही दिखाएगा, तो वो कहीं आपकी एरर तो नहीं हो रही, उसका ज्ञान जब तक आप नहीं ले लोगे, आज की तारीख में भी इतने एक्सपीरियंस के बाद भी हम जब कंप्यूटर में फीड करते हैं सबसे पहले हम सन की राशि और सन की पोजीशन देखते हैं डेट और टाइम के अनुसार। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है, तब हम आगे चलते हैं उसमें। इतना एक्सपीरियंस है उसके बाद जो भी हमारे माइंड में सेटअप बैठा हुआ है हम वो चेक करेंगे फिर आगे चलेंगे।
ओके।
ओवर कॉन्फिडेंट हम नहीं होते हैं तो ऐसे हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने में काफी टाइम लगता है, बाकी उसका कैलिबर क्या है उससे पता चल जाता है। न्यूमरोलॉजी में वैदिक न्यूमरोलॉजी 45 आवर्स में सिखाता हूँ। होरा एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी 30-35 आवर्स। वास्तु 30-35 आवर्स। लाल किताब भी लगभग 2-3 महीने में आती है।
ठीक है।
एस्ट्रोलॉजी भी बेसिक है, 2-3 महीने लेता है।
ठीक है।
सारे कोर्सेज हम कराते हैं।
गॉट इट, गॉट इट। मेरा एक और क्वेश्चन रहा है जो मैं ना एक्चुअली जब हम कुंडली और न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे वो मुझे बाद में ध्यान आया इस चीज़ का कि समझे हमने इस बारे में ब्रीफली बात करी थी, मुझे थोड़ा सा और जानना है फाइनल एक कंक्लूजन के लिए कि जैसे समझे कि किसी की कुंडली में 5 से 10-15 आधे घंटे मिनट ट्विंस ले लीजिए, एक 10 मिनट पहले आया, एक 15 मिनट बाद में आया, तो थोड़ा ना टाइम का डॉक्टर ने भी थोड़ा अलग लिखा, पर हम जब उनकी कुंडली देख रहे हैं उनके टाइम के हिसाब से, बर्थ टाइम के हिसाब से, एंड देन हम उनका भाग्यांग मूलांक पूरा देखते हैं, तो उसमें अगर मेजर डिफरेंस होता है कभी कभी इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से?
बिल्कुल होता है।
तब हम आप क्या रूट लेते हैं फिर?
इसको हम कहते हैं जुड़वा बच्चे, ट्विंस। ट्विंस में ज्यादातर 2 मिनट के फर्क से लोग हमें बताते हैं।
हाँ जी।
अब 2 मिनट के अंदर कुंडली नहीं बदलती और उसको चेंज नहीं होता, आधी पौनी डिग्री का ही फर्क पड़ता है।
ओके।
लाखों में कोई चांस होगा कि कुंडली बदल जाए, लाखों में। और देखते हैं ट्विंस में है दोनों अलग अलग, अक्सर मिल जाएंगे।
और काफी स्टार्क डिफरेंस होता है कि कोई एक जगह है कोई दूसरी जगह पे है।
उसका कुछ तो बायो रीजन है,
एक्स
फैक्टर, वाई फैक्टर।
हाँ जी, हाँ जी।
कुछ तो वो रीजन है।
ओके।
और जो चीज हमारे पास आती है वो तो बायो के बाद ही आएगी।
आएगी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट।
तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर 16 वर्ग है।
ओके।
16 तरह के चार्ट।
हाँ जी।
पहला चार्ट जिसको हम कुंडली कह देते हैं उसको हम कहते हैं D1।
ओके।
डिविजनल चार्ट 1।
अच्छा, ओके।
वो 30 डिग्री का होता है। उसकी कैलकुलेशन के एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम उसको सब प्लेस कर देते हैं, हाउसेस को, प्लैनेट्स को और राशियों को। उसके बाद आगे है D2 है, D3, D5, 7, D9, D10 और सबसे छोटे पीरियड का टाइम वो है, वो चार्ट है D60।
ओके।
D60 आधी डिग्री का होता है और वो 2 मिनट का अंतर चेंज हो रहा है। तो अक्सर जुड़वा संतानों को वहां से देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाता है यहाँ क्यों आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि न्यूमरोलॉजी तो पूरी डेट पे है, वहां से कहां से लोगे? तो मैंने न्यूमरोलॉजी को एडवांस करा होरा न्यूमरोलॉजी पे जो 1 घंटे की है।
ओके।
और उसके अंदर मैंने एक चार्ट दिया है H60।
ओके।
वो 1 मिनट के डिफरेंस से चार्ट बदल जाता है। तो जुड़वा बच्चों को वहां से देखते हैं, यानी सरस्वती माँ के आशीर्वाद से मैंने कोशिश ये करी है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरह हर बात का आंसर दे।
एक और क्वेश्चन, प्लूटो वेस्टर्न न्यूज और वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अब वो एक प्लैनेट नहीं रहा या नहीं रहेगा, बर्स्ट हो जाएगा, मल्टीपल चीजें चल रही हैं उनके उसमें, हमारे उसमें भी उसके डिफरेंस में हमारी
हम प्लूटो कंसीडर नहीं करते हैं।
ओके।
हम जो 9 प्लैनेट्स करते हैं कंसीडर, उसमें से 2 राहु केतु तो छाया करा है।
हाँ जी।
मेन हम 7 प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं।
ओके।
जिसमें सैटर्न हमारी अर्थ से सबसे दूर है।
दूर है, हाँ जी।
ठीक है जी। और मून सबसे पास है। तो वो 7 प्लैनेट्स को हमने 7 डेज दिए।
ओके।
वो 7 डेज को हमने संडे मंडे से लिया। ये सब कैलकुलेशन है। संडे के बाद मंडे क्यों आ रहा
है? हाँ।
और मंडे से क्यों ट्यूसडे आ रहा है? ये सब कैलकुलेशंस हैं। ये होरा से कैलकुलेशन है। और ये 24 आवर का ही क्यों है डे? ये अर्थ की रोटेशन है। अर्थ अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक सर्कल पूरा करती है। अर्थ हर रोज एक डिग्री आगे भी चलती है, तो पूरा सर्कल एक साल में करती है और उसमें 6 आवर और 9 मिनट जो 12 सेकंड बचते हैं उनको जोड़ जोड़ के हम एक लीप ईयर बनाते
हैं,
वहां एडजस्टमेंट है। जबकि इन सब की एडजस्टमेंट हमारे भारतीय कैलेंडर में विक्रमी संवत में जो हम चैत्र माह वैशाख माह तो उसमें अधिक मास में हम उसको कर रहे
कर देते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो प्लूटो हम लोग कंसीडर नहीं करते,
तो उनके जाने आने किसी से भी
हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे को तो 9 प्लैनेट्स वही जो अर्थ पे असर डाले और जो हम पे
असर डाले। गॉट इट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमें जितने भी हमारे डाउट्स थे, हमारे ऑडियंस के डाउट्स थे, वो क्लियर करने के लिए आशा करती हूँ कि अभी जब ये एपिसोड लाइव जाएगा तो हमारे ऑडियंस के और क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको थोड़ी हेल्प कर पाएंगे, हम आपको दोबारा रीच आउट करेंगे।
कोई बात, मैंने कोशिश करी है कि आज के लोगों को कुछ भ्रांतियां ना रहे, हम आसानी से उन चीजों को जान लें। ये मेरा प्रयास रहा है। आपका धन्यवाद मुझे और लोगों तक ये बात पहुंचाने का। जब कभी भी कोई डाउट वाली बात होगी मैं आ जाऊंगा, बता दूं।
थैंक यू,
धन्यवाद।
थैंक यू।